سورة قلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما انت بنعمت ربك بمجنون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ کہ وہ فرشتے لکھتے ہیں تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بے شک تو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہے. پس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے. بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بھٹکنے والوں کو خوب جانتا ہے اور راہ یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے. فلا تطع المکذبین ودوا لو تدخن فیدخنون. بس تو جھٹلانے والوں کی بات نہ مان. وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. اور نہ تو کسی ایسے شخص کا کہنا مان جو زیادہ قسمیں کھانے والا، بے وقار، کمینہ، عیب گو، چغل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گناہ گار، گردن کش، پھر ساتھ ہی بے نصب ہو. ان کا نظام مالم و بنین. اس کی سرکشی صرف اسی لیے ہے کہ وہ مال اور اولاد اور بیٹوں والا ہے. اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے یہ تو اگلوں کے قصے ہیں. سنسمہ علی الخرطوم. ہم تو اس کی ناک پر داغ لگائیں گے. سونڈ، ناک کو سونڈ کہا گیا، ہاتھی کی جیسے سونڈ ہوتی ہے. یہ تھی آیت نمبر 1 سے 16. ان آیات کے مختلف ٹاپک لکھیں گے. پہلا ٹاپک ہے قلم کی قسم. دین اسلام کا پڑھنے پڑھانے سے بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ آج اسی دین سے تعلق رکھنے والی خواتین کے پرس میں قلم ہی نہیں ہوتا، لپسٹک تو ہوتی ہیں. اور میں نے بعض دفعہ لوگوں کو آئی برو پینسل سے فون نمبر لکھتے دیکھا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لیکن آپ محسوس کم کرتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ اسی سے مزاج پتہ چل جاتے ہیں. اور اکثر گھر میں پین چاہیے ہو تو شور مچا ہوتا ہے، پین دو، جلدی دو، فون آیا ہوئے اور فون لینا، اور کبھی جو ملتا ہے وہ چلتا بھی نہیں ہے. یہ کسی قوم کے زوال یافتہ ہونے کی علامت ہے. قلم ہمیشہ اپنے پاس رکھا کریں. اور حیرت مجھے ہوتی ہے جب لوگ میٹنگ میں آتے ہیں اور یوں آتے ہیں جیسے مہمان بلائے گئے، سینے پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے. قلم بہت اہم ہے. جو لکھتا نہیں ہے نا، اس کی باتیں پھر لکھی نہیں جاتی. یہ یاد رکھیے گا. آپ کوئی بھی کارنامہ انجام دینا چاہتے ہیں نا، دین یا دنیا کا، تو لکھنے کی عادت ڈالیں. دوسرا ٹاپک ہے ان آیتوں کا، تم کچھ نرم ہو، یہ تم کو اور نرم کریں گے. ہائی لائٹ کر لیجئے آیت نمبر 8 اور 9، 8 اینڈ 9. فلا تطیع المکذبین ودوا لو تدخنوا فیدخنون. بس چھٹلانے والوں کا کہنا نہ مانو، یہ تو خواہش کریں گے کہ تم ڈھیلے ہو جاؤ، نرم ہو جاؤ، ایک کام پہ عمل چھوڑ دو، پھر تم سے باقی یہ خود ہی کروا لیں گے. یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی نفسیاتی کیفیت کو پیش کیا گیا. دنیا میں جب کوئی انسان اپنے لوگوں میں سے نکل کر اللہ کا بننا چاہتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا دل چاہتا ہے کہ بس اب میں وہی کرتی جاؤں جو میرا رب چاہتا ہے، لیکن اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بے چین ہونے لگتے ہیں. پھر وہ کیا کہتے ہیں، سب چھوڑ دو؟ کبھی بھی نہیں یہ کہیں گے، اتنے بیوقوف نہیں ہوتے. وہ کیا کہتے ہیں، بس یہ ایک کام چھوڑ دو. ایک چھوڑیں گے نا تو باقی وہ آپ سے خود ہی چھڑوا لیں گے. یعنی یہ حصہ اگر آپ اپنا موٹو بنا لینا، تو کبھی آپ اپنی فرینڈس اور اپنے ریلیٹیوز اور ان تمام لوگوں کے جو دین کی طرف آپ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا چاہتے ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے. ایک میں ان کی مانوں گی نا، دوسری بھی منوائیں گے. ایک ساتھی تھیں، پاکستان سے پڑھ لکھ کے آئیں، قرآن پڑھی بھی تھیں. شروع میں لوگ جب آتے ہیں، اور ذہن میں یہ بھی بہت ہوتا ہے کہ ویسٹ کا ماحول بہت فرق ہے، بہت کیئرفل بھی ہوتا ہے انسان. کسی جگہ ان سے میری بھی ملاقات ہوئی، آنے بھی لگیں، کچھ عرصہ ٹیچ بھی کیا، بہت اچھی لڑکی تھی، پھر ایک دم غائب ہو گئیں. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ ایک آدھ سال کے بعد پھر میری دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی، تو بالکل نہ وہ رنگ تھا اور نہ وہ ڈھنگ تھا کہ پہچان بھی ممکن نہ رہی. وہ بھی پہچان گئیں. شروع میں تھوڑا سا ایسا بندہ پھر اوائڈ کرتا ہے، اگنور کرتا ہے کہ میں کیا جواب دوں. میں بھی ایسے لوگوں کو کبھی یہ فیل نہیں ہونے دیتی کہ میں نے پہچان لیا. اور حقیقت میں کچھ لوگ تو ऐसे हुलिये में बाहर दिखते हैं कि मैं खुद पहचान ही नहीं पाती। खैर, किस्सा मुख्तसर, दोबारा अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी में जब कुरान रखा तो उनका शौर बेदार हुआ। फिर एक दिन फूट फूट के रोई, कहने लगी, मेरी एक गलती थी जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। मैंने कहा, क्या? शौहर की बस ये बात मान ली कि बस ये चेहरा खोल लो, बस अब ये तुम वेस्ट में हो। निकाब करती होंगी, चेहरा छुपाती थी, यानी कहती कि पहले दिन मैंने अपने शौहर की ये जो बात मान ली थी ना कि बस चेहरा खोल लो, तो मैंने भी ये सोच के कि हो सकता है ये यहाँ रहते हैं, इनको पता है यहाँ कितनी सख्ती है, वट्स एवर, तो मैंने खोल लिया। लेकिन आज देखें कि जिस्म पे कपड़े भी पूरे नहीं। ये है वद्दू लो तुदख़िनु फयुदख़िनु, यूँ सिर कहते हैं लोग। आपने देखा हो कभी सर पे स्लिपरी दुपट्टा आपने लिया हो ना, तो एकदम नहीं गिरता, आहिस्ता आहिस्ता स्लिप होता है, और आहिस्ता से पहले आपको सर से तंग करता है, फिर आप गर्दन में उसको लपेटते हैं, थोड़ी देर आपके काम में रुकावट है ना, उतार को रखते हैं, कहते हैं इसको छोड़ो, ये मुझे काम नहीं करने दे रहा। ये वो एक स्लिपरी रास्ता होता है, इस पे वही बंदा जम सकता है जिसको अपने उस काम का यकीन हो, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, वरना ये दुनिया बहुत फिसलने वाला रास्ता है। आपके नेकी की तरफ बढ़ते हुए कदमों को लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा करते क्यों हैं? कभी आप ये सोचते हैं? आपको क्या हुआ? मैंने इतना छुपाया ना, यानी मैंने क्या छुपाया? देखिए अभी इस वक्त अगर आप मुझे देखें, स्कार्फ तो मैंने लिया हुआ है ना, और अगर मैं चेहरा भी छुपाऊंगी तो मैं यहाँ छुपा लूंगी या कुछ ऊपर से करूंगी। कभी आप सोचा करें रवैयों को, लोगों की सोच को सोचा करें, इनको क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है? गिल्ट आता है, अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, ये अपने अंदर के एक जिसको कहते हैं ना कि हे जान को, या अपनी शर्मिंदगी को मिटाने की बात है। उर्दू में आपने कहावत सुनी होगी कि एक हमाम में आगे आप खुद ही समझ जाएंगे। जब हम अपने लोगों में रंगे हुए होते हैं ना, तो लोग बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। वो सब कहते हैं हम सब एक जैसे हैं, ज़रा दिल में कहीं आती भी बात तो फ़ौरन दूसरे को देख के कहते हैं शुक्र है मैं उससे तो बेहतर हूँ ना। यानी आप सोचें कि लिटरली लोगों को ये मैंने बातें कहते हुए सुना है कि दूसरों से तो अच्छे हैं ना, चले गले में तो डालते हैं ना, अच्छा चले हम ये तो नहीं करते ना। सिस्टर थी और वो बेचारी दीन की तरफ आई तो तकलीफ हुई उनको, शोहर का सरासर काम जो था वो इंटरेस्ट बेस्ड था, डायरेक्टली लोन देते थे लोगों को और उसके ऊपर इंटरेस्ट लेते थे। तो उन्होंने जाके एक बात की मियाँ से कि ये सही नहीं, ये इस्लाम में जायज नहीं, तो कहने लगी कि वो मुझे कहने लगे मैं चोरी तो नहीं करके लाता, मैं लोगों के घर में डाका तो नहीं डालता, लोग खुद आते हैं और मुझे देते हैं, तो ये कहाँ से गलत हो गया? ये है वो कैफियत जो अल्लाह ताला ने नायतों में बयान की है। फला तुती इल्मुकज्जिबीन, लफ्ज़ तकजीब को ज़रा गौर करते जाइएगा इस 29वें पारे के पढ़ने के दौरान। अल्लाह ताला कहते हैं झुटलाने वालों के पीछे ना लगना, और झुटलाना क्या है? हम नहीं मानते, और कुरान का इनकार करने वाले थोड़े लोग हैं, झुटलाने वाले ज़्यादा लोग हैं। अब एक वाक्या है, माल की मोहब्बत में जीने वालों की मिसाल। क्या? इन्ना बलौना हुम कमा बलौना असहाबल जन्ना, बेशक हमने इन्हें इस तरह आजमा लिया जिस तरह हमने बाग वालों को आजमाया था, जबकि उन्होंने कसमें खाई कि सुबह होते ही इस बाग के फल उतार लेंगे, और इंशाल्लाह न कहा, इस पर तेरे रब की जानिब से एक बला चारों तरफ घूम गई और ये सो ही रहे थे, बस वो बाग ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती। अब सुबह होते ही उन्होंने एक दूसरे को आवाजें दी कि अगर तुम्हें फल उतारने हैं तो अपनी खेती पर सवेरे ही सवेरे चल पड़ो। फिर वो सब चुपके चुपके ये बातें करते हुए चले। अल्लाह यदखुलहल यौम अलैकुम मिस्कीन, कि आज के दिन तुम्हें कोई मिस्कीन तुम्हारे पास ना आने पाए। व गदौ अला हर दिन कादिरीन, और लपके हुए सुबह सुबह गए, समझ रहे थे कि हम काबू पा गए। फलम्मा रौहा कालू इन्ना लदाल्लून, जब उन्होंने बाग देखा तो कहने लगे यकीनन हम रास्ता भूल गए। बल नहनु महरूमून, नहीं नहीं बल्कि हमारी किस्मत फूट गई। इन सब में से जो बेहतर था उसने कहा कि मैं तुमसे ना कहता था कि तुम अल्लाह की पाकीज़गी क्यों बयान नहीं करते, तो सब कहने लगे हमारा रब पाक है, बेशक हम ही जालिम थे। फिर वो एक दूसरे की तरफ रुख करके आपस में मलामत करने लगे। कालू या वैलना इन्ना कुन्ना तौगीन, कहने लगे हाय अफसोस यकीनन हम सरकश थे, क्या जब के हमारा रब हमें इससे बेहतर बतला दे, हम तो अब अपने रब से ही आरजू रखते हैं। कज़ालिकल अज़ाब, यूं ही आफत आती है, और आखरत की आफत बहुत बड़ी है, काश इनको समझ होती। ये थी आयत नंबर 17 से 33, 17 to 33। इन आयत का टॉपिक है इखलाक की बुलंदियाँ और पस्तियाँ। एक वाक्या बयान हुआ इन आयात में, बहुत ही खूबसूरत वाक्या है। कहते हैं कि एक शख्स था, अल्लाह ने दुनिया का माल भी बहुत दे रखा था, लेकिन खौफ और तकवा की दौलत भी बहुत दे रखी थी। बस अब हम दुनिया के माल को तो दौलत समझते हैं, लेकिन खौफ तकवा इन चीज़ों को नेमत नहीं समझते। उसकी आदत क्या थी कि बाग में जिस दिन कटाई होती तो कुछ हिस्सा मिस्कीनों को देता था। अब गरीब लोग थे, उनको पता होता था कि आज फसल कटने वाली है, तो वो पहले से जमा हो जाते, तो वो सबको देता, तो पहले उनको भी देता, वो खुश होते। उस बाप का फिर इंतकाल हो गया। जब बात बच्चों के हाथ में आई तो कहने लगे, बाप कितना बेवकूफ़ था, हाँ इतनी मेहनत की कमाई और उसमें से इतना गरीबों को दे देता था, अब करें क्या, फसल कटेगी तो फिर तो ये सारे ही आएंगे, चलो एक चाल चलते हैं। और वो क्या के सुबह में वो आएंगे ना, हम रात को जाके आधी रात को फसल काट लेंगे, ना कोई गरीब आए और ना हम उसको दें। कहा ठीक है, ये प्लान था घर में बैठ के जो बन रहा, लेकिन आसमानों पे जो जात मौजूद है उसने क्या किया कि रातों रात एक ऐसी आग आई कि उनके बाग को जला के भस्म करके। जब वापस आए उस जगह पे तो ना खेत था ना खेती थी। कहने लगे हम तो रास्ता भूल गए हैं। फिर समझ में आई कि हमने अल्लाह के कुछ बंदों का हक रोकना चाहा, अल्लाह ताला ने हमारा रोक लिया। यहाँ असल में एक शख्स की मिसाल है कि जो इस दुनिया में कमाता है ना, वो बजाहर खेत और उससे मिलती हुई कोई चीज़ लगती है, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह का दिया हुआ है। अगर आज हमारे घर में कुछ है तो आप देखिए कि वो किसकी देन है, क्या हमारी खूबी है। कभी हम अपने आप को आईने में तो देखें, और फिर कभी अपने मुलाजमों को देखें, कई हमसे कई गुना खूबसूरत होंगे, हमसे ज्यादा ताकतवर जिस्म वाले, कई अकल में ज्यादा होते हैं। मालिक को साइन तक नहीं करने आते, अंगूठा लगाने वाले मालिक, और उन्हीं के बेचारे काम करने वाले बड़े लिखे लोग होते हैं। लेकिन अमूमन लोगों की अंदर बुखल क्या होता है, और ख़ास तौर पे बात करूंगी खवातीन की, जब आपस में बैठती है ना, अब यहाँ तो वो मसला ही नहीं है, यहाँ तो लोगों ने खुद ही एक सिस्टम बनाया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ज्यादतियाँ करने से बचे हुए हैं। वरना अमूमन खवातीन की गुफ्तगू का मौजू क्या होता है, तुम कितने देती हो अपनी मेट को, भाई मैं तो 5,000 देती हूँ और सारा दिन रहती है और रात रहती है, चलो मैं तो ये भी कराती हूँ वो भी कराती हूँ और मैं तो 3,000 देती हूँ, अच्छा कल से मैं भी उसके सर पे पड़ूंगी। हम तो फलां से ड्राइविंग भी कराते हैं, हम उससे ये भी कराते हैं वो भी कराते हैं, और हम उसको 4,000 देते हैं। यानी बाज़ दफ़ा हम बड़ी अकलमंदी समझते हैं कि जब हम दूसरों के मुलाजमीन की तनख्वाह कम कराते हैं। यानी मुझे किसी ने चंद दिन पहले ही पूछा किसी के बारे में कि पाकिस्तान में रहते हैं और इस तरह से हालात हैं वट सो एवर, और उनकी 5,000 रुपये तनख्वाह है। 5,000 रुपये का जब उन्होंने लफ्ज़ बोला ना, तो मुझे फ़ौरन पाकिस्तान में जो नया नोट इशू हुआ था 5,000 का, वो याद आ गया। आपको होता है कि इस वक्त आम लेन देन में लोगों का एक दूसरे के लिए 5,000 का नोट चलता है, जो अपने बच्चों को किसी को दिखावे में मुंह दिखावे में देते हैं। पहले जो नोट 1,000 का बड़ा लगता था वो छोटा लगता है, अब लोग 5,000 पे बात करते हैं, और जिस बंदे की पूरी तनख्वाह 5,000 है। और अगर आप अपनी दोस्त को साथ ये भी कह दें कि इतना सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं, फलां जगह से मुलाओ देखो 3,000 में तुम्हारा काम होगा। हम जब खींचते हैं ना तो गरीबों को ही खींचते हैं, किसी सस्ती दुकान पे खड़े हो जाएंगे ना, और हाल क्या है कि उससे और खींच निकलवाएंगे, और चले जाएं किसी ब्रांडेड स्टोर में तो हम उसके साथ और भी 4 ज्यादा दे के आ जाएं, पूछते भी नहीं कि चुप करो या कीमत नहीं पूछते। ये जुल्म है, ये ज्यादती है। इसीलिए आज देखिए कि हमारे यहाँ अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर हो रहा है। अगर हाथ खींचना है तो फिर अमीरों से हाथ खिंचवाइए, लेकिन ये गरीबों का जो छोटों का हम ले लेते हैं ना, ये रहता नहीं है, और ये कितना बड़ा जुल्म होता है कि इसकी फिर सजा दुनिया में भी मिलती है। बाज़ दफ़ा वही लोग जो हमारे मुलाजिम होते हैं, अल्लाह ताला ऐसा उलट फेर करता है हालात का कि वही फिर हमारे सामने किसी एक ऐसे रूप में दिखते हैं कि हम उनसे मदद मांगने वाले होते हैं। तो इंसान के दिल के तकवे की बात है कि गरीबों के लिए उसका दिल बहुत नरम हो। जो आपने किर्स करनी है ना, वो ब्यूटी पार्लर से कर लीजिए, उनको कहें कि ज़रा ये फेशियल जो है इसका ज़रा हाथ कम रखें, वहाँ तो कहते नहीं अच्छा इससे भी अच्छा है कोई तो वो भी कर दो। एक एक दुल्हन जहाँ 10-15 से 20 हज़ार रुपए में तैयार हो, और जो चंद घंटे के बाद सिंक के अंदर सारा पानी के अंदर चला जाएगा मेकअप, उस पर तो हम किर्स ना करें। और उसी दुल्हन के जोड़े को बनाने के लिए जब हम रिक्शे वाले से झगड़े कि नहीं मैं तो 20 ही दूंगी, और वो गरीब जो सुबह से खड़ा है उसने रोटी तो खानी है, वो कहता है बैठ जाओ, जालिम हो गए। यकीन करें कि हमने इस गरीबों को भी जालिम कर दिया। हम जब ऐसा खींचते हैं ना, वो भी देखते हैं कि इनके पर्सों में इतनी बड़ी थैली है, वो अंधे तो नहीं होते, वो देख रहे होते हैं कि ये बेगम का पर्स कितनी दफा खुलता है और 1,000ों के नोट इसमें से जा रहे हैं दुकानों पे, और मुझे देते वक्त इसको हमेशा यही मसला होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसा दिल दे दे कि कम से कम ये तो सोचें कि अगर मैं इनकी जगह हूं तो मेरा क्या हाल होगा। इन्नल मुत्तकीना इंदा रब्बिहिम जन्नातिन नईम अफनजलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मा लकुम कैफ तहकुमून। परहेजगारों के लिए इनके रब के पास नेमतों वाली जन्नतें हैं, क्या हम मुसलमानों को मिसल गुनाहगारों के कर देंगे? तुम्हें क्या हो गया है? कैसे फैसले कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो कि इसमें तुम्हारी मनमानी बातें हों, या तुमने हमसे कुछ कसमें ले रखी हैं जो कयामत तक रहें कि तुम्हारे लिए वो सब कुछ है, तुम अपनी तरफ से जो मुकर्रर कर लो। इनसे पूछो कि इनमें से कौन इस बात का जिम्मेदार और दावेदार है, क्या इनके कोई शरीक हैं? तो चाहिए कि अपने अपने शरीकों को ले आए अगर ये सच्चे हैं। ये थी आयत नंबर 34 से 41, 34 से 41। इन आयत का टॉपिक है अल्लाह से डरने वाला और ना डरने वाला बराबर नहीं। हाईलाइट कर लेते हैं आयत को, बहुत ही सोच को भरने वाली आयत है, आयत नंबर 35। अफनज अलुल मुस्लिमीन अकल मुजरिमीन। और अगली आयत मालकुम कई फतह कुमून। दुनिया में बहुत सारे लोग इस ज्याती के मुंतजर हैं कि हम जो चाहें करें और उसके बाद हमें वही जन्नत मिल जाएगी जो सब कुछ करने वालों को मिलेगी जो रब की मर्जी पे ज़िंदगी गुजारते हैं। दुनिया में ऐसा होता है? एक वो शख्स है जो हर वो काम करता है जो उसका दिल चाहता है, और दूसरा वो है जो वो काम करता है जो उस वक्त का तकाजा होता है, जो उस माहौल का तकाजा होता है। क्या दोनों को एक ही जगह मिलती है? एक तालिब इल्म जो खूब पढ़े लिखे मेहनत करे और एक बिल्कुल फेल हो जाने वाले काम करे, क्या दोनों को फर्स्ट आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। अगर दुनिया में कोई एग्जामिनर ऐसा कर दे तो आप सोचिए कि वो जुल्म करेगा तो क्या कल कयामत के दिन अल्लाह ऐसा जुल्म करेगा? लेकिन बहुत सारे लोग इसी जुल्म का इंतजार कर रहे हैं। शऊर के साथ सोचने की बात है। हम जब अमल नहीं करते और साथ ये भी कहते रहते हैं अल्लाह जन्नत दे दे, अल्लाह जन्नत दे दे, तो असल में हम यही कह रहे होते हैं कि अल्लाह बेइंसाफ़ी कर, अल्लाह बेइंसाफ़ी कर, अल्लाह बेइंसाफ़ी कर। हमें खुद पता होता है हम क्या कर रहे हैं। एक शख्स था कोई, तो ख़यानत करता था, कोई अफसर था बड़ा, और आखिर कहते हैं कि 100 दिन इंसान गलत काम करते एक दिन पकड़ आ जाती है। तो पकड़ा गया गबन के केस में। अब माओ की तो आदत होती है ना दुआएं करने की, तो उसकी माँ कहने लगी ए अल्लाह मेरे बच्चे का इंसाफ करना। कहते हैं अम्मा चुप करो, ये क्या कह रही हो? आज दुनिया में 100 दिन गलत काम करते हैं ना तो एक दिन पकड़े जाते हैं। अगर आप अल्लाह से यही कहना शुरू कर देना अल्लाह हम जो करते हैं तो हमारे साथ वही करना, तब यकीन करें कि अल्लाह अकबर, वो दिन तो बिल्कुल मुख्तलिफ दिन है। यौम युक्शफु अन साकिम व युदाउना इला सुजूद फला यस्ततीउन। जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो सजदा ना कर सकेंगे, निगाहें नीची होंगी और इन पर जिल्लत और ख्वारी छा रही होगी। हालांकि ये सजदे के लिए इस वक्त भी बुलाए जाते थे जबकि सही सालम थे। बस मुझे और इस काम को छुटलाने वाले को छोड़ दे, हम इन्हें इस तरह आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे कि इनको मालूम भी ना होगा और मैं इन्हें ढील दूंगा, बेशक मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। क्या तो इनमें से कोई उजरत चाहता है जिसके तावान से ये दबे जाते हैं, या क्या इनके पास इल्मे गैब है जिसे वो लिखते हों? फसबिर लि हुक्मी रब्बिक, बस अपने रब के हुक्म का इंतजार कर। वला तकुन कसाहिबिल हूत इज नादा वहुवा मखदूम, और मछली वाले की तरह ना हो जा जबकि उसने गम की हालत में दुआ की। अगर इसे इसके रब की नेमत ना पा लेती तो यकीनन वो बुरे हालों में चटियल मैदान में डाल दिया जाता। इसे इसके रब ने फिर नवाजा और इसे नेकोकारों में शामिल कर दिया। वहीं यकादुल्लज़ीना कफरू लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउ अज़्ज़िक्र। और करीब है कि काफिर अपनी तेज निगाहों से आपको फिसला देंगे जब कभी कुरान सुनते हैं और कह देते हैं ये तो जरूर दीवाना है। हालांकि वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, दर हकीकत ये कुरान तो तमाम जहान वालों के लिए सरासर नसीहत है। ये थी आयत नंबर 42 से 52, 42 से 52। इस आयत का टॉपिक है कल ये अपनी मर्जी से ना झुका, आज हम ना झुकने देंगे। हाईलाइट कर लीजिए आयत नंबर 42 से लेके 43, दो आयतों को हाईलाइट कर ले। روایات میں آتا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے اور آپ کے جلال اور آپ کے کمال کو دیکھ کر لوگ جھکنا چاہیں گے، لیکن وہ لوگ جو دنیا میں نمازوں کے وقت پہ بوجھل ہو جاتے تھے وہ جھک نہ سکیں گے، ان کی کمریں دوہری کر دی جائیں گی. کیا مطلب؟ کہ وقت کان یدعون الی السجود وہم سالمون، کل تک تو تم سلامت تھے، سجدوں کی طرف بلائے جاتے تھے لیکن تم نہیں جھکتے تھے. میں ان آیات پہ آتی ہوں تو مجھے ایک بزرگ یاد آتے ہیں، بہت اچھے انسان تھے، نیک تھے. بزرگ سے مراد کی جوانی کی بات ہے ان کی، پڑھے لکھے تھے، انٹلیکچوئل تھے. اور ایسے لوگ بعض دفعہ باتیں بہت پتے کی کرتے ہیں لیکن وہی سے وہ باتیں میچ نہیں کرتی. کبھی میں نے ایسی بات ان کی زبان سے سنی کہ کیا فرق پڑتا ہے، ہم اور بھی تو اتنی نیکیاں کرتے ہیں نا، تو نماز سے کیا ہوتا ہے؟ ضروری تو نہیں نا. اور اپنی دنیا کی امتحان میں سمجھاتے تھے کہ دیکھو ضروری تو نہیں نا کہ 100 میں سے 100 ہی نمبر لو، 80 لے لیں گے، 70 لے لیں گے، اس طرح کی باتیں. خیر وہ تو ایک الگ بات تھی، وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جو بات ان کی اچھی لگی وہ یہ تھی کہ جو بندہ دل کا نیک ہوتا ہے نا، میرا مشاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر دنیا میں پاک ضرور کرتا ہے. ایک ایسی بیماری کا شکار ہوئے کہ جس نے ان کو بستر پہ ڈال دیا، اسپائنل کارڈ میں کچھ مسئلہ ہوا، گردن کی اور ریڑھ کی ہڈی میں کچھ بیماری تھی، اور ایک طویل عرصہ بستر پہ رہ کے گئے، اور آخر میں جب فوت ہوئے تو بالکل اتنا سا جسم ہو چکا تھا، یعنی ہڈیاں کھل گئی تھیں، ڈیزالو ہو گئیں بونس. تو اپنے وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک دفعہ ان سے ملاقات کا موقع ملا، کہتے تھے میرا تو یہ حال ہے کہ وقت کان یدعون الی السجود وہم سالمون، کہ کل سجدوں کی دعوت تھی تو ہم کرتے نہیں تھے اور آج بستر سے ہل نہیں سکتے، اور روتے تھے، آنکھوں سے مسلسل آنسو گرتے ہوتے تھے. اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو. آج دنیا میں اگر اپنے آپ کو اللہ کے لیے بستروں سے اٹھا کے سجدوں میں کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس کو ہم پہ رحم آ جائے گا. ورنہ کل قیامت کے دن جب اللہ غیب کے پردوں کو چاک کر کے سامنے آئے گا تو پھر آپ دیکھیے کہ اس وقت تو ہر ایک جھکے گا نا. آج بھی دیکھیے پولیس مین کو دیکھ کے بندہ سیدھا ہو کے بیٹھنے لگتا ہے، بیلٹ پہ ہاتھ جانے لگتا ہے، سپیڈ کم ہونے لگتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ خود سامنے آئے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس وقت ان کو مہلت دیں گے کہ وہ اپنے آپ کو روکیں؟ پھر دوسری چیز ان آیات میں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں، شاید آپ کو یاد ہو پیچھے ان کو ذوالنون کہا یا ذنون کہا، نون بھی مچھلی کو کہتے ہیں، بھوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں. بہت بڑی مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور وہاں انہوں نے جو پکارا تھا وہ تو سن چکے،